ओबजन। योग हम सभी का प्रिय सब्जेक्ट भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। योग जब अच्छा लगता है तो सभी को अनुभव होता ही होगा। योग अच्छा लगना अर्थात बाबा से मिलन होना, लगता है ऐसा जैसे मिलन होता है बाबा से, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाए तो ऐसा लगता है कि आत्मा की शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं और एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर लक्ष्य थीम सभी के सामने रहना चाहिए। बाबा की मुरली में कुछ दिनों पहले आया था कि हर बात में योग बल से काम लो। योग बल जो हमारे पास संकल्प शक्ति के रूप में काम करता है, उससे जीवन की सभी समस्याओं को हल किया जाए, इसके अनुभव करते चलें तो अपने में विश्वास बढ़ता जाएगा कि हमारे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं बाबा का एक महावाक्य याद दिलाऊं आपको, 2 साल पहले का है, कि संसार में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं वो काम मनोबल के आधार से किए हैं। कोई भी बड़ा काम करने के लिए जिसके पास जितना मनोबल है, मन की शक्ति है, उतना ही वो व्यक्ति सफल है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास मनोबल के साथ और कौन सा बल है? परमात्म बल। तो एक हमारा बल, एक परमात्म बल, दो बल हमारे साथ हैं। तो बाबा ने कहा जिनके पास परमात्म बल और अपना मनोबल हो उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, कठिन नहीं। क्यों कठिन होता है? क्योंकि किसी व्यर्थ संकल्प की दीवार सामने रहती है, जैसे पता नहीं होगा या नहीं, ये संकल्प मनोबल को कमजोर करता है हमेशा, नहीं होगा या नहीं। निगेटिव संकल्प, उल्टा संकल्प हमारे मन की शक्ति को बहुत कमजोर कर देता है। तो बाबा ने कहा अगर ये निगेटिव संकल्प हटा दो, केवल ये संकल्प रखो कि होना ही है तो वही होगा। एक बात आपने सुनी होगी, केवल एक बार कही है बाबा ने, वो बहुत पहले कही है, जब दीदी यहां होती थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी, तो उनसे मिलते हुए कहा था कि जैसे आजकल तुम कहते हो कि जो कुछ ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, हम सब की ये भाषा रहती है, जैसे जैसे तुम संपूर्णता के समीप जाओगे तो तुम ये कहोगे या तुम्हारी फीलिंग्स ये होंगी कि जो हम सोचेंगे वही होगा। ड्रामा के रहस्य को जानने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि ड्रामा में जो होगा वो होगा या जो हम सोचेंगे वही होगा। किसी किसी को ये दोनों बात विरोधी लग सकती हैं, परंतु जब हम संपूर्णता के समीप जाते हैं, ड्रामा में जो होना है वही हमारे संकल्प में होता है, इसलिए दोनों बात विरोधी नहीं होती, समान होती है, समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है, बिल्कुल उनमें कुछ भी विरोधाभास नहीं होता है। तो हम अपनी शक्तियों को पहचाने। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लें कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। संसार में भी लोग कहते हैं आज तक अपने को पहचानो, और जैसे हम सबको आत्मा का ज्ञान मिल जाता है तो हम सोच लेते हैं हमने अपने को पहचान लिया, परंतु अपने को पहचानना इतना सरल काम नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानना, हमारे अंदर बहुत शक्तियां छुपी हुई हैं, अगर सचमुच हम उनको पहचान लें तो हमारे जीवन में कोई बात कठिन नहीं, कोई समस्या हमारे लिए टेंशन नहीं, ये सब खेल हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं आजकल कि मनुष्य अपने मन की केवल 10% शक्ति यूज कर रहा है, केवल 10, बाकी 90 वेस्ट जा रही है। तो भी हम सब देखते हैं कि संसार में इसी मनुष्य के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, चमत्कारिक काम हो रहे हैं 10% शक्ति को यूज करने के बाद भी। और अगर हम पूरी शक्ति यूज करने लगे 100 की 100 तो क्या हो जाए, सतयुग में हमारी सारी शक्ति यूज होगी, इसलिए वहां कुछ बचता ही नहीं जिसके लिए हमें कुछ करना पड़े, समस्या ही नहीं है, कुछ निगेटिविटी नहीं रह जाती। तो हम अपनी शक्तियों को, अपने मन की शक्ति को पहचानेंगे। आज हम आपका ध्यान इस एकाग्रता के संबंध में एक बात की ओर ले चलें, वो है इंग्लिश जानने वाले इमोशनल फीलिंग्स, सेंसिटिव फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, हिंदी में हमारे मन की भावुकता। हमारे यहां प्रचलित शब्द है बहुत, फीलिंग बहुत आना, हम सब कह देते हैं इसको बहुत फीलिंग आती है, फ्लू की बीमारी है। भावुकता, इमोशनल फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, बहुत नाजुकपन, ये मनुष्य की एकाग्रता को भंग करते हैं। हर मनुष्य के लिए भावुक होना और बुद्धिमान होना दोनों ही आवश्यक हैं। केवल बुद्धिमान होना अच्छा नहीं होता, ठीक बात है ना। आजकल जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, कोई व्यक्ति अपने भाषण में कह रहा था कि आप संसार के अगर बहुत बुद्धिमान लोगों पर नजर दौड़ाएं तो उनके शरीर का अंत सुसाइड से हुआ, उन्होंने अपना घात कर लिया, इतने परेशान हुए वो, इतनी टेंशन हो गई उन्हें। बुद्धिमान लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसमें अहम बढ़ जाता है। इसलिए भावुकता और बुद्धिमत्ता दोनों का अच्छा संतुलन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम केवल भावुक हैं तो कमजोर हैं। एक उदाहरण ले लें आप छोटा सा, मां और बच्चे का संबंध। मां भावुक है, उसकी भावना बच्चे के लिए बहुत सुंदर है, प्यार के रूप में है, पालना के रूप में है। मां भावुक है बच्चे के लिए, तो मां कहती है कि अभी मैं इसको स्कूल पढ़ने नहीं भेजूंगी, मैं अपने पास रखूंगी इसको, कहीं कुछ हो जाए वहां तो। उसको जरा सी बीमारी हो गई तो उससे ज्यादा मां परेशान है भावुकता के कारण, वो उसकी बहुत पालना कर रही है पर इस भावुकता के कारण वो उसको कैसा बना देगी, कैसा बनाएगी, बहुत नाजुक, बहुत कमजोर। वही मां अगर बुद्धिमान भी है तो वो उसको शक्तिशाली बनाएगी, उसको पता है कि बच्चा गिर पड़ के ही मजबूत होता है। बच्चा गिर गया और मां परेशान, बुद्धिमान मां जानेगी कि बच्चा गिरेगा, चोट खाएगा, उल्टा पलटा होगा, इससे वो मजबूत होगा। वो स्कूल में जाएगा, बच्चों से लड़ेगा, खेले कूदेगा, कहीं परेशान होगा, कहीं कुछ, उससे वो आगे बढ़ेगा। तो हम सभी को अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, भावुक बहुत नहीं होना है। भावुक व्यक्ति दूसरे को रोता देखेगा तो क्या करेगा, खुद उससे ज्यादा रोने लगेगा। भावुक व्यक्ति को सम्मान मिल जाए तो चार पांच दिन खूब खुशी खुशी में रहेगा, और जरा सा कोई कुछ बोल दे तो सारी की सारी खुशी एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। एक बहुत अच्छा स्लोगन हमारे पीस पार्क में लिखा हुआ है कि स्थिति को बनाने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में एक सेकंड। तो हम एक सेकंड में बिगाड़ दें उस स्थिति को जो हमने सालों में बनाई है, किसी ने सालों में मेहनत करके बहुत धन कमाया हो और एक सेकंड में नष्ट कर दे तो कैसा लगेगा। हमारी स्थिति बहुत काम की, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यू है उसकी। हम उसको सेकंड में न गंवा दिया करें, अपने में दृढ़ता लाएं, भावुकता से ऊपर उठें, अपनी भावुकता को कंट्रोल में करें। भावुक व्यक्ति ही बहुत फीलिंग में आते हैं, और फीलिंग हमारे जीवन की शांति के लिए, खुशी के लिए, शक्तियों के लिए बहुत घातक है। जिसको फीलिंग बहुत आती है, कुछ ऐसी आत्माएं देखी कि इस जीवन में जो फीलिंग की सौगात लेकर ही जन्मे हैं, और मृत्यु सौगात के साथ ही प्राप्त होती है। फीलिंग से हमें ऊपर निकलना है। फीलिंग पहले कम होती चले, फिर होते होते समाप्त हो जाए। जैसे बाबा ने कहा, जिन आत्माओं में अभिमान ज्यादा होता है उन्हें, याद है किसी को, उन्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। फीलिंग है ही उनमें जिनको अभिमान ज्यादा है। कोई एक छोटी सी कन्या भी बहुत फीलिंग में रहती है, उसे ये पता नहीं चलता उसके पास अभिमान है, पर अभिमान होता है। अभिमान का दूसरा स्वरूप होता है अहंकार का स्वरूप नहीं होता, लेकिन उसके कोई निगेटिव स्वरूप रहते हैं कामनाओं के। जो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है, जो बहुत भावुक है, वो दूसरों से बहुत कुछ चाहता है, कामनाएं ज्यादा रखता है, और वो पूरी नहीं होती तो फीलिंग में आती है आत्मा। तो हमें अपने चित्त को एकाग्र करना है, तो भावुकता से, फीलिंग से इसको निकालना ही पड़ेगा। अभी अभी का एक आत्मा का अनुभव है। तीन दिन पहले ही कोई विदेश की एक बहन आई, बहुत समय से ज्ञान में है, कहा मेरी ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यही कि फीलिंग बहुत आती है, सब कुछ अच्छा है पर फीलिंग बहुत है, तो क्या करें। और इस फीलिंग के कारण सारा पुरुषार्थ बस जैसे जीरो होता रहता है। कुछ ना कुछ बात तो रोज हो ही जाती है, कहीं ना कहीं लौकिक काम भी करने होते हैं उन्हें, और अलौकिक सेवा भी, उस सब कुछ खत्म हो जाता है। रोज रात को ऐसा लगता है खाली है, फीलिंग के कारण। तो हमने उसको तीन विधि बताई और कहा कि एक ही दिन करके हमें रिजल्ट बताओ। कल ही उसने रिजल्ट बताया, एक ही दिन में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा, जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज्यादा सफलता। क्या है वो चीजें, कुछ नई नहीं है हम सबके लिए। आप सबने अनेक बार सुनी होंगी, और योग की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो था स्वमान का अभ्यास, दूसरा अभ्यास था, इंग्लिश में उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, देखना बाबा के स्वरूप पर, आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करना, बुद्धि से उस स्वरूप के दर्शन करते रहना। और तीसरा था मनन शक्ति को बढ़ाना। मनन शक्ति के लिए हमने उनको सिंपल सी बात बताई, सभी कर सकते हैं ये काम, अब थोड़ा सा समय निकाल लें, 15 मिनट, टॉपिक लिख लें आत्मा, और केवल ये लिखें कि बाबा ने आत्मा के लिए क्या क्या कहा है। 25 बातें लिखें, उसने लिखी पहले ही दिन 25 बातें। लिखते ही उसको ये एहसास हुआ कि तुम्हारे पास आत्मा का कितना बड़ा ज्ञान है जो सारे उपनिषदों में नहीं है, वो तुम्हारे पास है इतना बड़ा आत्मा का ज्ञान। तुमने उसको साधारण समझा हुआ है कि बाबा ने कह दिया तुम आत्मा हो, बस बात खत्म हो गई, बड़ा गुह्य ज्ञान हमारे पास है। 25 बार उसने स्वमान का अभ्यास किया, जैसे आत्मा में चेतना आ गई, और विजुअलाइजेशन का एक अभ्यास हम सिखाते हैं लोगों को, बहुत सुंदर है। अनेक आत्माएं ये अभ्यास करके योग युक्त हो चुकी हैं, और योग युक्त होते ही जीवन की बहुत सारी समस्याएं तो लोप हो जाती हैं। क्यों कि समस्याएं बहुत सारी तो होती ही नहीं, वो हमें दिखाई देती हैं, हमें लगती हैं कि बहुत समस्याएं हमारे पास, अगर हम अच्छी स्थिति में हैं तो समस्याएं होती नहीं। तो वो क्या अभ्यास था, बहुत सिंपल, कि आप 15 मिनट के लिए योग में बैठें। 2 बार मैंने केवल उसको करने को कहा, सवेरे और शाम 15-15 मिनट, और 10-10 सेकंड की एक एक्सरसाइज करेंगे, ड्रिल हम उसे कहते हैं, रूहानी ड्रिल, कि 10 सेकंड आत्मा को देखो, चमकता हुआ हीरा, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड परम धाम में सर्वशक्तिवान को देखो, इस संकल्प से देखो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों की किरणें उससे चारों ओर फैल रही हैं, फिर 10 सेकंड आत्मा को, 10 सेकंड सर्वशक्तिमान को, ये ड्रिल करते रहो, 15 मिनट तक करो, एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाएगी। एक बार करने से ही आत्मा को लगने लगा कि बहुत कुछ मिल गया है आज। जब ये आपका अच्छा अभ्यास होने लगे तो इसमें दूसरी चीज जोड़ दो, 10 सेकंड आत्मा को देखने के बाद कि मैं आत्मा निकलकर चली गई परम धाम, देखना है केवल कि मैं आत्मा परम धाम में हूं, और सर्वशक्तिवान की किरणों को अपने में समा रही हूं, बाबा से किरणें निकल रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई, शरीर में आ गई, और मुझसे चारों ओर वो किरणें फैल रही हैं। ये ड्रिल करते रहो। हमें योग अभ्यास में अपने को इस तरह के संकल्प देने ही होते हैं। योग में आ गए, बैठ गए, लाल लाइट हो गई, और बाबा को याद करना बस। अगर इसके अलावा कुछ संकल्प नहीं है तो योग में सुख नहीं मिलेगा। अच्छे से अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे ड्रिल हम अपने पास रखें, विजन बनाए, चित्र बनाए, हमें ऐसे ऐसे अभ्यास करना है, तो हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें अपने जीवन में ये अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि हम एकाग्र क्यों नहीं होते हैं। हर एक का कारण अलग अलग होगा। ये प्रैक्टिस तो सबके लिए एक है कि हम विजुअलाइज करने की, बाबा के स्वरूप पर अपने को स्थिर करने का अभ्यास करें, पर मन बुद्धि के भटकने के सबके कारण अलग अलग हैं। ठीक है ना ये बात, किसी का कुछ किसी का कुछ। एक बार आपको क्रोध आ गया तो लंबे समय तक के लिए मन भटक गया, होगा ना ऐसा, सबको अनुभव है, क्रोध कहीं ना कहीं आ जाता है। एक बार का क्रोध घंटों मन को भटकाव में ले आता है। फीलिंग आ गई किसी बात की, कर्म में उलझ गए, कोई समस्या सामने आ गई, किसी के पास और कोई विकार हो जो बुद्धि को खींच रहा हो, मन को वो चीजें भटका देती हैं। अब वो कारण चाहे कुछ भी हो, हमें जनरल रूप से एक तो अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक नियम बना लें अपने जीवन में कि हमें रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है, बहुत सिंपल सा काम है, 15 मिनट लगते हैं। कोई भी टाइम आप चुन सकते हैं, सोने के समय पढ़ो, दिन में जैसी आपकी दिनचर्या से समय निकले। एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़नी है, क्योंकि ये देखा गया कि मनुष्य के मन को डिस्टर्बेंस तब ज्यादा होता है जब ज्ञान की शक्तिशाली बातें उससे भूल जाती हैं, और ज्ञान की बहुत शक्तिशाली बातें अव्यक्त मुरलियों में हैं। उन्हें आप नोट करके अलग से अपने पास रख लें, उनको पढ़ते रहें। कम से कम मैं कहूंगा 50 अच्छी पॉइंट्स का एक स्टॉक खजाने के रूप में हमारे पास होना चाहिए, अलग लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में, जिनको पढ़ने में आपको 5-7 मिनट ही लगें। तो ज्ञान जितना शक्तिशाली रूप में हमारे साथ रहेगा, वो हमारा अस्त्र शस्त्र भी है तो कवच भी है, ढाल भी है। एक एक बात याद आते ही दिमाग पर आया हुआ बोझ, मन पर चढ़ा हुआ मैल, बुद्धि पर कोई भारी चिंता, कोई पास्ट की याद जो भारी कर रही हो मन को, 1 सेकंड में हल्की हो जाती है। एक भाई बैठा क्लास में, हम तो सिंपल रूप से क्लास करा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था कौन बैठे हैं। हमने सहज रूप से कहा, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान है, छोटी बातों की चिंता क्यों करते हो। इस एक बात को सुन के उसके जीवन का लंबा चौड़ा बोझ उतर गया। उसने बाद में आके मुझे बताया कि मैं कितना परेशान था, इस एक बात को सुना तो लगा कि किसके लिए तुम परेशान हो। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी जिम्मेदारी उसने उठा रखी हो, उनको अगर छोटी बातें परेशान करें तो संसार का क्या होगा। सुनते ही उसका जैसे तीसरा नेत्र खुल गया। बात बहुत छोटी है, हम सब जानते हैं इसको, पर समय पर विस्मृति होती है ज्ञान की, ये आत्मा के लिए सबसे घातक चीज बनती है। इसलिए थोड़े दिन अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करके आप 50 ऐसी बातें अपने पास नोट करें जो आपके जीवन का सहारा बन जाए। कल की मुरली में ही हमने देखा बाबा की एक बहुत सुंदर बात आई परसों संडे की मुरली में, कि तुम्हारा सहारा एक है। मनुष्य मनुष्य को सदा सहारा नहीं दे सकता, मनुष्य भी सहारा तो देता है, पर मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेगा मनुष्य। पैसा देगा, डॉक्टर होगा दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, संबंधी होंगे पास बैठे होंगे, सिर दबा रहे होंगे, लेकिन अगर उसकी पीड़ा न जा रही हो तो कोई क्या सहारा देगा। संपूर्ण और सच्चा सहारा बाबा देता है। ये बात सुन के एक आत्मा का जैसे कि सारा तीसरा संपूर्ण नेत्र खुल गया, और उसे लगा कि तुम जो मनुष्यों में सहारे ढूंढती हो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, इससे अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं जीवन में। इसलिए सहारा उसे ही बना लो जो सच्चा सहारा, जिसको लोग अंतिम सहारा, सदा काल का सहारा मानते हैं। तो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातों का भंडार सभी अपने पास रखें, इसके लिए स्टडी आवश्यक है। इसलिए बाबा हम सबको नशा चढ़ाया करते हैं। कौन सा नशा रखो, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कि कोई बड़े हो गए हैं, कोई बुजुर्ग हो गए हैं, कोई माताएं बिना पढ़ी लिखी वो, उनको ये नशा रहता ही नहीं कि हम स्टूडेंट हैं। लेकिन हमें अगर ये नशा हो जाए हम स्टूडेंट हैं, तो हम स्टडी अवश्य करेंगे। स्टडी हमारे स्टूडेंट लाइफ का मुख्य पहलू है, होना ही चाहिए। जो स्टडी नहीं करते, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कभी कभी मुरली सुनते होंगे, मास में एक बार, कोई हफ्ते में एक बार, कोई भूले भटके, इसको तो स्टूडेंट लाइफ नहीं कहेंगे। और इससे आत्मा ज्ञान के बल से भरपूर बन नहीं सकती। इसलिए जिस संसार में हम रहते हैं आप सब जानते हैं वो कैसा है, अब उसका क्या वर्णन करें, समस्याओं से भरपूर, तनाव से भरपूर, निर्बल आत्माओं का साथ, चारों ओर विकारों का वातावरण जो बढ़ता जा रहा है। ऐसे संसार में रहकर कोई निर्लिप्त हो जाए, उपराम हो जाए, इस वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो जाए, ये हंसी का खेल तो नहीं हो सकता कि बाबा कहे और हम हो गए हाथ उठा दें कि बाबा 6 मास में हो जाएंगे। कितनी बार हाथ उठाया हम सबने, हाथ उठाने से तो काम नहीं चलता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली मेहनत स्टडी की, दूसरी मेहनत स्वमान के अभ्यास की, जो वास्तव में मेहनत नहीं है, दोनों ही मेहनत नहीं है, आनंदकारी विषय है दोनों ही। एक भाई कल ही हमारे पास आया, श्याम को छोटा सा कुमार है, स्वमान का अनुभव आपको सुनाते हैं दूसरों के। उसने आके सुनाया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे ना फीलिंग बहुत आती है, कोई कुछ कह जाए, 10 भाई रहते हैं एक जगह, उनके लिए वो सेवा करते हैं कि रोज कोई ना कोई कुछ कह ही देता है उस 10 में से, भाई तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुम टाइम पे नहीं आए, तो सारा दिन मेरा उसे एक बात में बीत जाता, इसने ये कहा, उसे एक ही बात में सारा दिन गुजर जाता है। मैं भी जानता हूं ये बड़ी भारी कमजोरी है, कहा उसने छोटी सी बात, कहेगा तुमने खाना आज अच्छा नहीं बनाया और मैं सारा दिन परेशान हूं, क्या करूं, योग भी नहीं लगता है। मैंने उसको दोनों ही बातें बताई जो उस विदेशी को बताई थी, और उसको मैंने कहा था कि तुम कल श्याम को आया था कि 24 घंटे में मैं एक महान आत्मा हूं, इस स्वमान का अभ्यास 108 बार करके मेरे पास आना, और ये ड्रिल बताई थी 10-10 सेकंड की, तो मुझे अभी मिला था 11 बजे, आप ही बता रहा, मैं उसको भूल गया वो कौन था, मेरे पास आया तो मैं तो पहचाना नहीं, मैं जल्दी भूल जाता हूं। उसने कहा कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई आधे दिन में ही, तो मैं कैसे हो गई, तो फिर बताया, मुझे याद आ गया। तो केवल स्वमान का अभ्यास और सवेरे एक बार 10 सेकंड की ड्रिल करने से आज उसका चेहरा चमक रहा था, मैंने देखा, फिर मुझे याद आ गया कि कल रात को ये मेरे पास आया था। तो स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है, हम इसके महत्व को समझें। स्वमान के अभ्यास के लिए हमें एक छोटी सी बात जान लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कई भागों में बांट दिया है, उसमें से 2 भाग उसके प्रसिद्ध रूप से चर्चा में आते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, बाह्य मन, अंतर मन। बाह्य मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम सोच रहे हैं सारा दिन, जो हमारा मन काम कर रहा है, किसी चीज को देख के हमारा मन चलता, किसी बात पर हमारा मन चिंतन करता है, ये सब चेतन मन, बाह्य मन। उसकी सूक्ष्म स्थिति मन की अंदर, अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हम भर देंगे वो नेचुरल रूप से हमारे जीवन में काम करने लगेगा। हम बहुत सरल रूप से आपके सामने रखते हैं, कोशिश करें आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह ग्रहण कर लें। किसी मनुष्य को चिंता लग जाए किसी बात की, सब जानते हैं कि वैसे कोई समस्या हो तो मनुष्य मोटे रूप से सोचता है उसके बारे में, यानी अपने बाह्य मन से सोचता है, बुद्धि से सोचता है, पर चिंता लग जाए तो वो हमारे मन की गहराई में उतर जाती है ना, बात छप जाती है, उसके सपने आएंगे, अब योग में बैठेंगे तो बाकी सब भूल जाएगा, वो फिर से इमर्ज होके काम करने लगेगा। हमारा जो ये अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें हम भर दें कुछ अच्छी चीजों को, भरने का तरीका वही है जैसे चिंता के द्वारा भर जाती है कोई चीज, वैसे ही गहन चिंतन के द्वारा भर जाती है।
वैसे ही किसी चीज को गहराई से रियलाइज करने के द्वारा भर जाती है। बाबा ने हमें कहा, तुम इष्ट देव देवियां हो। हमने सुन लिया और ज्ञान के द्वारा हम गहन चिंतन में लाकर यदि हम अपने अंदर समा दें तो हम इष्ट देव देवी बन गए। ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा बन गई, मनुष्य से ब्रह्मा, ब्रह्मा भी है तो मनुष्य, पर मनुष्य से ऊंची स्थिति। एक सेकंड लगा, जैसे ही शिव बाबा ने कहा तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, और आत्मा ने स्वीकार कर लिया, अंदर चली गई बात, सबकॉन्शियस माइंड में समा गई, तो ब्रह्मा बन गए। फिर उनका लौकिक संबंध अपना नहीं रहा, ब्रह्मा तो सबका हो गया ना, छोटे विचार उनके पास आ नहीं सकते। उसके बाद वो किसके लिए इम्प्योरिटी रखेंगे, सब तो उनके बच्चे हैं, वो किसके लिए भेदभाव रखेंगे, ये गरीब है, ये अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब तो उनके है ना। एक सेकंड की गहरी अनुभूति ने संसार बदल दिया। समझ रहे होंगे आप कैसे हम अपने अंतर मन में अच्छी बातों को भर दें, तो फिर नेचुरल काम करेंगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी, नेचुरल रूप से वो संस्कार, वो व्यवहार, बोल, हमारा वो स्वरूप स्वतः ही काम करता रहेगा। तो हम अपने अंतर मन में गहराई से कुछ चीजों को समाएं, और उसका एक सुंदर तरीका है स्वमान का अभ्यास। मैं इसलिए बहुत लोगों से यह अभ्यास कराता हूं कि 108 बार करो, क्योंकि प्राय बहुत लोग स्वमान का अभ्यास नहीं करते, और अगर हम कहें 2-4 बार करो तो उसका उन पे कोई असर नहीं होता। अगर 108 बार आत्मा करती है सारे दिन में, मैं एक महान आत्मा हूं, इसका अभ्यास 108 बार किया तो शाम तक आत्मा ये फील करने लगती है सच तुम महान हो, और ये बात सबकॉन्शियस माइंड में समाने लगती है, और बहुत सारी चीजों का बोझ, दबाव, चिंता, परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए स्टडी, स्वमान, विजुअलाइजेशन, स्वरूप पर स्थिरता, सरल शब्द में स्वरूप पर स्थिरता, तीनों का अभ्यास करें। एकाग्रता का सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न तरह के संकल्पों को हटाना, भिन्न भिन्न तरह के इसमें व्यवधान है उनको हटाना, उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन चीजों को आप लेकर चलें, सहज है ना, थोड़ी सी मेहनत अपने से करनी ही चाहिए। हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगर हम उसके महत्व को नहीं समझते और मेहनत नहीं करते तो हमें कुछ मिलता नहीं है। एक और अनुभव छोटा सा मैं सुनाऊं आपको। अभी अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया था पिछले बाबा के ग्रुप से 4 दिन पहले, तो मैंने उससे अचानक पूछा कि बाबा से मिलके जाओगे? कहा नहीं, मुझे तो आज ही जाना है। क्यों भाई, बाबा आ रहे हैं 4 दिन के बाद, मिलके जाओ। उत्तर दिया उसने कि मैं एक बार यही शांति वन के इसी हॉल में बाबा से मिलके गया हूं, और कुछ ऐसी विधि मिल गई है कि मेरा वैसा ही मिलन रोज होता है, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि मैं मिलके जाऊं, मैं तो रोज मिलता हूं, उतना ही अच्छा। तो बड़ी अच्छी बात है ये, वो अनुभव मैं आपको उसका पूरा ही सुना देता हूं, काम आएगा आपको जीवन में। अब से 6-7 मास पहले पिछला टर्न था, जब बाबा का पिछला सीजन, तो लास्ट ग्रुप में वो बाबा से मिलने आया, डॉक्टर है वो, बॉम्बे में था, तो रात को 11:30 बजे मेरे पास आया, मैं सो चुका था, उसने जगाया कि मुझे बहुत जरूरी मिलना, सवेरे 5 बजे चले जाना है, इसलिए मुझे समय दे दो। तो मैं उससे मिला, कहा मेरी घर की ये समस्याएं हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, कार्डियोलॉजी में MD कर रहा था, 3 बार फेल हो चुका हूं, मेरी समस्या जा नहीं रही, बहुत परेशानी है, बाबा से मिलके तो बहुत सुख मिल गया है, तो क्या करूं? वही व्यक्ति अब आया था, तो मैंने उसको छोटे छोटे अभ्यास बताए स्वमान का, लेकिन एक अभ्यास बताया था कि सवेरे उठकर रोज अपने को 4 संकल्प याद दिलाना, क्योंकि वो डॉक्टर था और इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि सबकॉन्शियस माइंड में भरना। मैंने ये बातें पहले बताई है, लेकिन उसको व्यक्तिगत बताई गई थी तो तीर की तरह काम किया। पहला संकल्प आंख खुलते ही कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। संकल्प हम सबके लिए छोटा है, लेकिन इससे शक्तिशाली संकल्प तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तीसरा संकल्प, मैं विघ्न विनाशक हूं। चौथा संकल्प, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद योग करना और सारा दिन कम से कम 10 बार स्वमान का अभ्यास करना, कोई भी एक लेकर उसने वो सब किया। और अब आके मुझे बताया, उसने ये ही कहा कि मैं तो आपको ये समाचार सुनाने ही आया हूं एक दिन के लिए, कि मैं उस एग्जाम में जिसमें 3 बार फेल हो चुका था, फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूं। आज ही रिजल्ट आई थी, कल ही तो मैं आ गया हूं बताने। फर्स्ट क्लास हुई है जिसमें 3 बार फेल हुआ, घर की जो बच्चों के साथ समस्या थी वो सब खत्म हो गई है। फर्स्ट क्लास की रिजल्ट मिलते ही दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में 7-7 अपॉइंटमेंट मिल गई है। खुशी से बताया कि सैलरी भी 30,000 रुपए मास मिलेगी। कितना खुश हो गया एक व्यक्ति। स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थिति सब बदल जाएंगी स्वतः ही। बाबा ने जो महावाक उच्चारण किए हैं वो गलत तो नहीं हो सकते, प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रश्न ही नहीं है कि गलत होंगे या नहीं। बाबा ने बार बार कहा है स्वस्थिति से परिस्थितियों को बदलो, लेकिन कभी कभी आत्मा परिस्थितियों के इतने अधीन हो जाती है कि तब स्वस्थिति को श्रेष्ठ करना अपने हाथ में नहीं रहता। यह है प्रैक्टिकल समस्या, क्या करें इसके लिए। बाबा ने तो ये कह दिया, जितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी परिस्थिति स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। पर प्रैक्टिकल ये है कि परिस्थिति विकराल होते होते होते, समस्याएं बढ़ते बढ़ते, मनुष्य उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, परेशान हो जाता है, कि उससे निकलकर स्थिति को श्रेष्ठ करना कठिन होता है। अब आप इसके लिए विचार करें कि ऐसा हो जाए तो क्या करें। स्थूल साधन भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे उस स्थान से आप कुछ समय के लिए हट के और जगह हो जाओ। थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए कि स्थान के भी अपने वाइब्रेशंस होते हैं, और जहां हम रह रहे हैं, जिस कमरे में सो रहे हैं, जहां खा रहे हैं, जो हमारा मकान है, वहां हमने ही कुछ ऐसे अगर निगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर दिए हैं तो वो हम पे हावी हैं। अब हमारी अपनी ही रचना हमें दबा रही है। ये बहुत अच्छी बात हो सकती है कि 1-2-3 दिन के लिए आप उस स्थान से हट जाएं, अगर संभव हो। दूसरी बात, जब ऐसा हो जाए अपने को थोड़ा दृढ़ करके बाबा में विश्वास कायम रखते हुए 3 दिन का तपस्या का प्रोग्राम बना लें। अपनी व्यक्तिगत तपस्या क्या किया जा सकता है, किसी की मदद ले लें। तो थोड़ा सा स्थूल रूप से हटने से और अभ्यास करने से परिस्थितियों से पार हो जाएंगे, क्योंकि संसार में ब्राह्मणों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा समस्याएं हैं, आजकल बढ़ती जा रही हैं। किसी को पारिवारिक समस्याएं भी हैं, किसी को बच्चों की समस्याएं, किसी को आपसी संबंधों की समस्याएं, बिजनेस की समस्याएं। आप इन सभी का हल आत्मिक दृष्टि, स्वमान और योग अभ्यास 3 से कर सकते हैं। आपके परिवार में आपको नजर आता है, मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं और बहुतों से इसके प्रैक्टिकल में प्रयोग कराए हैं, संपूर्ण सफलता। आपका बच्चा गलत राह पर जा रहा है, बुरे संग में आ गया है, आपने समझा लिया है, मारपीट की है, नहीं सुधर रहा है, ये प्रॉब्लम्स भी कईयों को परेशान करती हैं। आप अपनी दृष्टि को बदल लो, आत्मा है ये, अपना पार्ट बजा रही है। जब हम ये कहते हैं अपना पार्ट बजा रही, हमारा कहने का ये अर्थ नहीं होता कि बजा रही तो बजाने दो। कुछ लोग इस बात को ठीक से नहीं समझते कि भाई बच्चा बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाने दो। नहीं, अर्थ ये है कि आप आत्मिक दृष्टि साक्षी भाव बढ़ाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति स्थिर होगी। उसके बाद जब आप उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखेंगे या कुछ कहेंगे तो आपके शब्द उस पर संपूर्ण प्रभाव डालेंगे। उसके पार्ट को आपको बदलना है, ठीक करना है उसे। तो ये आत्मा है, आत्मिक फीलिंग बढ़ाएं आप अपने अंदर। मेरा बच्चा है ये संकल्प परेशान करता है, ये मेरापन है जो आत्मा को भारी कर देता है, और मेरा आते ही एक बंधन है सूक्ष्म। इस बात को अच्छी तरह जान लें, जहां मेरा है वहां एक सूक्ष्म बंधन बन गया निगेटिव, और वहां हमारी शुभ भावनाएं पूरी तरह काम नहीं करेंगी, हमारे सब प्रभावकारी नहीं होंगे। इसलिए आत्मा है, आप बैठ के अच्छी तरह एक दिन दो दिन तीन दिन ये अभ्यास कर लो, ये आत्माएं हैं सब। और मैं स्वयं के लिए भी संकल्प देना है, मैं अपने को स्वमान दो, मैं इष्टदेव हूं, महान आत्मा हूं या कल्याणकारी हूं या बाप समान हूं। जो स्वमान आपको अच्छा लगे उसमें अपने को स्थित करो, फिर उसको कुछ कहो तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। जिस स्थान पे आपको कठिनाई हो रही हो अपने पारिवारिक जीवन में, कार्य धंधों में, वहां भी आप अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करें। घर में हो रही है तो हर घर की हर परिस्थिति को अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। विशेष रूप से 15-15 मिनट बैठकर सवेरे और शाम वाइब्रेशंस फैलाएं आप चारों ओर। वाइब्रेशंस फैलाने के लिए दो संकल्प सबसे शक्तिशाली हैं। एक है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। इसी विजन को बनाकर आप अभ्यास में बैठें। दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये दोनों ही अभ्यास बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते हैं, और इससे किसी स्थान पर बनी हुई समस्या नष्ट होने लगती है। जितना आपका शक्तिशाली अभ्यास होगा उतनी जल्दी आपको दिखाई देगा कि समस्याएं समाप्त हो रही हैं। एक और छोटी सी बात आपके सामने है, नई नहीं है, हजारों बार सबने सुनी होगी, फिर भी आत्माएं इस बात में गलती करती रहती हैं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, आप यदि चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा आपसे न करे, आपको न सताए, आपको बुरा न बोले, आपको सहयोग दे, आपके मार्ग में विघ्न न डाले, विरोध न करे, तो क्या करना चाहिए? स्वयं का परिवर्तन। और स्वयं को बदलने की शक्ति हम सब में है, दूसरों को बदलने की शक्ति भी है, पर ज्यादा है स्वयं को बदलने की। मनुष्य पहले स्वयं को बदल सकता है, दूसरों का तो हमारे हाथ में नहीं भी होता, पर अपना हमारे हाथ में है। इसलिए अपने को देख लें, हमारा बोलने का तरीका गलत तो नहीं है, सोचने का तरीका तो गलत नहीं है, हमारी भावनाएं तो गलत नहीं है। भावनाएं तो गलत हो ही जाती हैं, या नहीं? कोई हमारा विरोध करे, कोई हमें बुरा बोले, तो ऐसे तो इस संसार में गिने चुने दो चार लोग होंगे जिनकी भावनाएं न बदले। भावनाएं बदलती हैं। हमें अपने को थोड़ा सा समझदारी से जागृत करते हुए भावनाओं को ठीक कर लेना है। फिर से बदलेंगी भावनाएं, लेकिन ठीक करना है तुरंत। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारी भावना ही रिटर्न होकर हमारे पास आ जाती है। जैसे ईको सुना, देखा होगा आपने, आवाज हम देते हैं ना, टकरा के। अब यहाँ पहाड़ियों में भी होता है, आप जोर से ओम शांति बोलो तो लगेगा वापिस गूंज रही है आवाज इधर को। तो हमारी भावनाएं उस व्यक्ति से टकरा कर वापिस आ जाती है हमारे पास, और वो हमें भी कष्ट देती हैं, उस पर भी बुरा असर डालती हैं, हम पर भी बुरा। इसलिए जरा जागरूक करें, अपने को जागृत करें और भावनाओं को निगेटिव न होने दें। जो अपनी भावनाओं को ठीक रख सकता है उसके जीवन की समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं, व्यवहारिक समस्याएं। नहीं तो मनुष्य सदा ही शिकायत करता रहेगा कि भाई ये व्यक्ति हमसे ऐसा कर रहा है। लेकिन हम भावनाएं बदल लें तो दिखाई देगा कि वो व्यक्ति भी बदल रहा है। ऐसे ही विजन के लिए प्रश्न भी आया था, और हमें अपनी बुद्धि को आत्मा के स्वरूप पर स्थिर करना चाहिए, शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर करना चाहिए और अपने फरिश्ते स्वरूप पर। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे इस शरीर के अंदर शरीर जैसा ही लाइट का भी शरीर है। आत्मा दो शरीरों में बैठी है, पहले लाइट के शरीर में फिर स्थूल शरीर में। जब हम शरीर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो हम लाइट के शरीर के साथ जाते हैं। इसलिए इस प्रकाश के शरीर की, सूक्ष्म शरीर की शास्त्रों में बड़ी चर्चा है कि इसमें संस्कार हैं, इसमें कर्मेंद्रियां हैं, इसमें मन बुद्धि है, इसमें बहुत सारी चीजें गिनाई गई हैं कि ये सब इसमें हैं। वो शरीर में कुछ नहीं होता, होता तो आत्मा की उपस्थिति के कारण है, पर उस शरीर की रचना वैसी है जैसी शरीर की। शरीर के अंग अंग में लाइट फैलती रहती है हमारे मन के संकल्पों से। हम अपने इस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को भी देखा करें, कभी कि हम ऊपर हैं आकाश में, कभी उसके ऊपर हैं सूक्ष्म वतन में, कभी हम बाबा के रूप में बैठे हैं सूक्ष्म रूप से मधुवन में जाकर, कभी हम एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं सकाश दे रहे हैं सारे संसार को। ये भी भिन्न भिन्न विजन हैं, और जैसे जैसे हमारा योग अच्छा होगा तो ये बात हमारे लिए कल्पना नहीं रह जाएगी कि हम कल्पना कर रहे हैं कि हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं, बैठे यहां हैं और ऐसे ही हवाई किले बना रहे हैं कि पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं। जैसे जैसे हमारा योग बढ़ेगा हमें अनुभव होगा कि हमने संकल्प किया हम पहाड़ी की चोटी पर हैं और हम वहीं हैं, यहां नहीं हैं। ये हमारे मन की शक्तियां बढ़ने से हमारे अनुभवों में बात आने लगेगी। तो सभी आज से ही, बाबा के मिलन के तो दो ही दिन हैं हमारे सामने, अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। स्वमान की तो बहुत सारी बातें सब जानते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं ये स्वमान बहुत अच्छे अनुभव कराता है। लेकिन 18 जनवरी के दिन विशेष रूप से मैं फरिश्ता हूं, लाइट के शरीर में हूं, ये संकल्प अपने को देकर 10 सेकंड कम से कम एक बार अपने को फरिश्ता देखें, 10 सेकंड कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, मुझसे चारों ओर लाइट फैल रही है। और ऐसा बहुत बार करें, सवेरे से शाम तक 25 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो मिलन का अनुभव सवेरे से ही प्रारंभ हो जाएगा। 18 जनवरी का दिन, एक बात और आपको याद दिला दें, आप अपने को तैयार कर लें उसके लिए, ये दिन वरदान दिवस होता है। वरदान मिलते हैं इस दिन बाबा से। आप अपने मन में कोई एक संकल्प रख लें, उस संकल्प के साथ योग करें, अपने को एकाग्रचित रखें, तो वही बात वरदान के रूप में प्राप्त हो जाएगी जब बाबा आपको दृष्टि देंगे। उदाहरण के लिए आप संकल्प कर सकते हैं कि मेरा जीवन आज से निर्विघ्न हो, और एकाग्रचित होकर उस दिन अच्छे अभ्यास करें तो जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। मेरी माया पर विजय हो, मैं विजयी रहता, तो माया पर विजय होने लगेगी। किसी को बहुत नींद आती हो योग में, तो क्या लेंगे वरदान? मैं निद्रा जीत हो जाऊं, ये संकल्प है केवल। एक भाई को बहुत नींद आती थी, वो सदा योग में सोता था, जब भी आधे मिनट के बाद, मुश्किल 10 सेकंड भी उससे योग नहीं होता था, सो जाता था। मैंने उसको इस वमान दिया कि तुम जरा एक दिन करके देखो, मैं निद्रा जीत हूं। उसको भी समझ में नहीं आया कि भला ये सोचने नींद भी आ रही और सोच भी रहा हूं कि मैं निद्रा जीत हूं, दोनों काम साथ साथ चलने लगे। तो लेकिन उसने जब किया तो ये सचमुच प्रैक्टिकल हो गया कि अगले दिन सवेरे से उसे योग में नींद नहीं आई, क्योंकि ये सब संकल्प वरदान रूप में हमारे साथ काम करते हैं। तो 18 जनवरी के दिन को अपने अपने लिए वरदानी दिवस सभी बना सकेंगे। बाबा की दृष्टि सब पर पड़ती है, कोई कहीं भी हो ऊपर से ही पड़ने लगती है और वरदानों का अनुभव जीवन में होने लगेगा। तो इस तरह सभी एकाग्रता को बढ़ाएं और यहां पर आकर कुछ वरदान लेकर ही वापिस जाएंगे। ओम चंद।
करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। घर की आती है करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है, तेरी याद में समाते हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है, संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। से भी पार है, मणियों का आधार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।